أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. شروع کرتے ہیں، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. دور قرآن 2025 DQ 2025، اور آج اس میں سے ہم کریں گے 28واں پارہ، پارہ نمبر 28، کہ جس میں ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کیسی تھی. لکھیے پارے کا تعارف. کوئی بھی پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک نیویگیٹر کی طرح اگر یہ چیزیں سن لی جائیں اور اس کو نوٹ کر لیا جائے تو باقی چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی، جس کو آپ کی ذمہ داریوں کے طور پہ دیکھتے ہیں، آپ کے دور میں لڑی ہوئی جنگیں، آپ کی مختلف ایکٹیویٹیز، جس کو آپ لکھ سکتے ہیں آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز، اس کے تو بہت سارے گواہ تھے. کسی بھی انسان کے باہر کے معاملات کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی انسان اپنے گھر میں کیسا ہے، اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسی ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ کیسے ہیں. یہ تب پتہ چلتا ہے جب انسان اس کے کسی اندر کھاتے، اس کے گھر والے کو کسی کو مل لیتا ہے. پروفٹ ایٹ ہوم، یہ ہے جی تھیم ہمارے اس سال کا، تھیم 28 پارے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، پروفٹ ایٹ ہوم. اس نام کی کتاب بھی ہے، اور ہم تو سیرت جو پڑھ ہی رہے ہیں اور جو آپ کے اخلاق حسنہ کے واقعات ہماری زندگی میں کھلتے ہی جا رہے ہیں، وہ بھی ہمیں بہت حد تک اپنے پیارے نبی کے ان معاملات سے آگاہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج کا پارہ اس لحاظ سے یونیک ہے. میں نے اس کو جب بھی پڑھایا، جس سال بھی پڑھایا، میں نے اس کو بہت انجوائے کیا. کیوں؟ کیونکہ اس پارے کی ہر صورت میں عورت کا ذکر ہے. لکھیے تھوڑا سا پارے کا انٹرو لے لیتے ہیں. ساتھ ہی صورت مجادلہ سے یہ پارا شروع ہو رہا ہے. بحث کرنے والی یا بحث کرنا کچھ بھی لے لیں. ایک خاتون تھی جن کا نام خولہ تھا. ابھی آپ کی پہلی صورت کی ڈیٹیلز بھی آ گئیں آپ کے پاس. خولہ تھی، ان کے شوہر نے اس دور کے رواج کے مطابق انتی علیہ کظہری امی کہہ دیا، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح، یعنی تیری پشت میرے اوپر میری ماں کی طرح. یہ عرب لوگوں میں ایک طلاق دینے کا انداز تھا، جس کو آج بھی کچھ دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں تو میری ماں بہن ہے. خیر، اب اس دور کے دستور کے مطابق طلاق ہو گئی. اب ان کے شوہر بوڑھے بھی تھے اور بیمار بھی تھے. یہ اپنا گھر نہیں توڑنا چاہ رہی تھی کہ اس عمر میں میں شوہر کو چھوڑ دوں گی، میرا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن اس بوڑھے بزرگ کو کون دیکھے گا؟ شوہر کو بھی ذرا ریگریٹ ہوگا. یہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں. حضرت عائشہ کہیں دور مسجد نبی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سن رہی ہیں یہ باتیں. اس عورت نے آ کر آپ سے بات شروع کی، اللہ کے نبی میرے لیے کوئی راستہ نکالیے. آج بھی لوگ دینداروں سے بار بار جو مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، سیم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ ڈھیلا جملہ بولیں تو ہم ان کے کندھے پہ تلوار رکھ کے کہتے ہیں جی انہوں نے تو کہہ دیا تھا کر سکتے ہیں. پھر کچھ مہینے ہفتے بعد کوئی دوسرا مل جائے گا تو اس سے بھی سیم باتیں کریں گے. تو خیر، اللہ کے نبی تو وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. آپ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تھے، آپ تو رب کی بات کو مانتے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور وہ عورت تکرار کرتی رہی کرتی رہی، یہاں تک کہ مایوس ہو گئی اور مسجد نبی میں ایک کونے میں جا کر بہترین طریقے سے وہاں بیٹھی اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاریاں کی. اللہ نے ایک عورت کے مسئلے کے حل کے لیے سورت مجادلہ نازل کر دی. عورت کے لیے اللہ کے ہاں اتنا اعلیٰ مقام ہے. تو عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کوئی کمزور نہیں ہیں. یہ کمپلیکس آج سے پہلے عورتوں کو نہیں ملا ہوا تھا کہ عورتیں نکارہ ہوتی ہیں، عورتیں ایسی. اور یہ جو جینڈر ڈسکریمینیشن دے کر ایکویلٹی کے نام پہ ویسٹ نے شوشہ چھوڑا تھا آج سے کوئی 60-70-80 سال پہلے، پہلے اس کا وجود بھی نہیں تھا. है वजूद जन से तस्वीर कायनात में रौनक, तो इस पारे का भी मेन गोल खवातीन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्द थे, उनके नाते आज के सारे मर्दों को और अल्लाह के नबी सल्लम की अजवाज खवातीन थी, उसके नाते सारी औरतों को आज के इस बारे में जो पैगाम मिलने वाला है वो क्या है कि रब्बानी मिशन, सोचिए क्या लफ्ज़ है ये, रब्बानी मिशन, रब की तरफ से जो मिशन जो काम आपको दिया गया उसके और घरेलू जिंदगी के बीच में तवाज़ुन कैसे रखा जाए। अब ये तो मैंने ज़रा मुश्किल लफ्ज़ बोले है ना, तो आज आप इसको कह लीजिए कि जी दीन और दुनिया में तवाज़ुन कैसे रखें। अच्छा ये हम कुरान पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, फिर हमारी पर्सनल लाइफ बड़ी मुतासिर होती है ना, फिर बच्चे इग्नोर होते हैं, फिर घर के मर्द ऐसे करते हैं, फिर घर के बुजुर्ग हैं आप पर मैं तो खवातीन है, मर्दों को हम क्या कहें, उनके लिए बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह बताने वाले, एक से एक आला, वो तो उनसे पूछ लेंगे। लेकिन इस बारे से आपको मुझे एक खातून होने के नाते कैसे बैलेंस कायम रखें जिसमें ना वो फराइज अपने जो उसको ऊपर अल्लाह ताला ने दिए जो जिम्मेदारियां दी उससे पीछे हो, ना अपने घर को इग्नोर करें। ये आप सबको मैं कहूंगी क्योंकि अब आपकी जिंदगी के अंदर ये कुरान आ चुका है। इसके बाद जो ही कोई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं तो लोगों को सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है, मैं फिर घर को साथ कैसे लेके चलूंगी, मेरे घर में ये है मेरा वो है, और डर लगता है। 3 घंटे ऑलमोस्ट कह लीजिए डेली आपको निकालने पड़ते हैं, डेली नहीं, मिसाल है कि आप सारे सबीरुल जन्ना करेंगे अगर तो बिगिनिंग में 3 घंटे लोगों को मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगी कि दौरे कुरान में रोज आकर तकरीबन चले 2.5 नहीं पौने 3 3 दिन 3 घंटे भी अगर आपके लगे तो मैनेज हो गया ना, यही चीज जरा इसको फैला दे ये और ज्यादा फैल जाता है। पारे के मेन थीम में एक बात जा रही है कि घर टूटने नहीं देना। इंशाल्लाह इस पारे के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से घरों के अंदर सुकून रखा जाए। घर प्यारा घर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं होम स्वीट होम, प्यारा घर अच्छा घर कौन सा होता है जहाँ सुकून हो। इस बारे में हम सीखेंगे स्पेस देना, हाउ टू गिव स्पेस टू अदर्स। इस बारे के शुरू में हम हजरत खौला का किस्सा पढ़ेंगे, लिख लीजिए। हजरत खौला का वाक्या बताता है कि अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलते और अल्लाह ताला को घर की इस्लाह कितनी मतलूब है। और ये वो औरत है कि जब अल्लाह के नबी के बाद एक मौके पे हजरत उमर के पास आई और एक बूढ़ी सी औरत है और वो कुछ बात पे बात बात पे बात करती जा रही है और उमर वहां से हिल नहीं रहे, कितना वक्त ले लिया उस औरत ने, जब तक वो खुद ना गई उमर वहां से नहीं हटे रज़ी अल्लाह अन्हो। तो बाद में किसी ने कहा आप एक मसरूफ इंसान है, आप इतना वक्त एक औरत को दे गए, उसको खुद ही चाहिए था आपके साथ सोच के बात करती। तो आपने कहा कि मैं उस औरत की बात क्यों ना सुनता जिसकी बात 7 आसमानों के ऊपर सुनी गई। कद समय अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। इस सूरत की एक और यूनिक चीज़ है, इसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है। तो यहाँ से कंसर्न देख लीजिए औरतों के लिए कितना है अल्लाह के पास। फिर इसमें आगे ज़िहार का कफ़ारा है, यहूद की सरगोशियों का तذکرہ है, मजलिस के आदाब हैं, मुलाकात से पहले सदका देना, एक वक्ती कानून राइज किया गया था कि लोग अल्लाह के नबी का बहुत वक्त ले लेते थे तो उनको बता दिया कि आप नबी से कोई बात करनी है ना पहले कुछ सदका करो, जैसे आज की दौर में किसी से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेकर उसकी फीस पे की जाती है, वकील हैं डॉक्टर्स हैं। तो बस ये चंद दिन तक रहा जब लोग संभल गए कि भाई हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था तो वो ख़त्म हो गया। सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मौका मिला था और वो खुश हुआ करते थे कि कुरान की इस आयत पे मुझे मौका मिला कि मैं अमल करूं। देखिए सहाबा कुरान अमल के लिए सुनते थे, हम सवाब और इसी तरह से कुछ और चीज़ों के लिए सुनते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। फिर इसके बाद हिज़्बुल्लाह की कामयाबी, अल्लाह का गिरोह क्या होता है उसकी कामयाबी के असूल है। फिर इसके बाद आगे सूरत हशर है जिसका मानी क्या है जमा करना, और एक मानी इसका अखराज या जिलावतनी भी है। यहूद के साथ एक जंग पेश आई थी बनु नज़ीर के नाम पे, गज़वे बनु नज़ीर इसी नाम के कबीले के साथ हुई थी, उसकी कुछ चीज़ों को बुनियाद बनाकर जंगी आदाब भी बताए गए और साथ ही बताया गया कि अगर तुम पहल करोगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम दरख्तों के कटने के ऊपर अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो, तो जो तुम इंसानों की और मुसलमानों की गर्दनों को काट देते हो, तो क्या ये कोई छोटी बात है? यानी इसमें आप कह रहे कि मुसलमान की जान की हुरमत की बात की जा रही है। बहरहाल ये भी जंग जो थी एक बहुत ही फितने के साथ शुरू हुई थी और बाद में फिर मुसलमानों को अल्लाह ने इसमें फतह दी। उसके बाद माले फ़ेह क्या होता है? गनीमत के माल को तो हम सूरह अनफाल की आयतों में देख चुके। माले फ़ेह यानी बगैर जंग के जो माल मिल जाए उसका क्या करना है, वो है फिर सहाबे कराम का इशार। सुबहान अल्लाह, एक ऐसा सहाबी के जिसने अपने घर में एक बंदे का खाना रात के अंधेरे में मेहमान को खिला दिया और मेहमान को तो खबर ना हुई लेकिन अर्शों के रब को तो पहले से ही पता था। उसने सिराज मुनीरा को भी बता दिया और इस तरह अल्लाह ताला ने उनके लिए कुरान की आयत बल्लज़ीन तबव्वो दार वल ईमान के बाद अगली बात जो वो उनके लिए खास कर दी। सहाबी का नाम अबू तलहा अंसारी था और अल्लाह ताला ने यहाँ से हमें भी बता दिया कि तुम्हारा दिल मेहमान नवाजी के लिए कितना खुला होना चाहिए। और इसी तरह से घर में मेहमान आ जाएं तो ये ना करो को ये क्या मेहमान बलाए जान और मेहमान रहमत लेके आए रहमत, ये गलत है। याद रखिए आम तौर पे रहमत जो होती है ना वो जहमत की चादर लिए हुए होती है। असान तक रहो शयन बहुआ खैरुल्लकुम, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे वो बुरी हो और बुरी लगे तो वो अच्छी हो। तो मेहमानों के हकूक एक इतना बड़ा हक है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इंडो पाक कल्चर में तो इसको बहुत ही मनाते हैं। हाँ लेकिन कुछ चीज़ें जिसको अल्लाह ने दिया है वो आपको देखने की ज़रूरत होती है, कहाँ से? हदीस से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका तذکرہ इस नाते से मिलता है, इंशाल्लाह उसको बाद में देखेंगे। फिर बनु कैनका की शिकस्त का तस्करा है। मुनाफिकीन शैतान की तरह, यानी शायद में मुनाफिकीन को शैतान का टोला कहा गया। फिर उसके बाद अस्माए हुस्ना यानी वो सूरत है जिसका ऑलमोस्ट एक पूरा रुकू अल्लाह ताला के नामों पे मौजूद है और आप देखेंगे कि 99 नामों में से एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी। जब मैंने अलमेस वाल अस्माउल हुस्ना सीरीज़ कराई थी तो एक तवील अरसा सिर्फ यही आयत रोज़ पढ़ी जा रही थी, इतने नाम तो एक में। तो इन तीन आयतों में अस्माउल हुस्ना है। इसके बाद सूरत मुमतहिना, इम्तिहान लेने वाली। इस सूरत में इन औरतों का इम्तिहान लेने का हुक्म है जो मक्का से हिजरत करके मदीना आती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बैत लेते थे। ये सूरत भी अपनी जगह एक खूबसूरत सूरत है। अलविला वलबरा, अलहुब्बु फिल्ला वलबुग्सु फिल्ला। कुछ भी नहीं समझ आया तो अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ खुल के सामने आता है, यानी दुश्मन खुदा से दोस्ती जायज़ नहीं। इसी तरह कुफार से तर्के मवालात पर ताईद की गई है, यानी कुफार से तुम्हारे ताल्लुकात की एक ख़ास लिमिट है और जब वो विलायत के दर्जे पे आने लगे तो उससे पीछे हट जाओ वरना ईमान चला जाएगा। फिर मक्का से आने वाली ख़वातीन का हुक्म और अहले ईमान की ख़वातीन के साथ जो मामला होगा, क्या खूबसूरत तरीके से इस आयत में हक महर की बात की गई, आप खुद हैरान हो जाएंगे तर्जमा सुन के भी। फिर उसके बाद सूरह सफ़ है, ये है बैरूनी ज़िंदगी, कितार बांधना। इस सूरत में मोमिनीन की सिफत बयान की गई कि 5 दफ़ा दिन में नमाजों की सफ़े बांधते हैं, सफ़ु सफ़ूफ़कुम, और बाद में जब मौका पड़ता है तो मैदान जंग में सफ़ बंदी करते हैं। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरत सफ़ है। शुरू में इसका शान नज़ूल है और इसी तरह फिर इसमें बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। दीन इस्लाम बाकी और गालिब रहेगा और इसी तरह से दीन के गलबे के इजहार के साथ ये सूरत पूरी होती है। और अगली सूरत जुमा, जिसके आखिर में जुमातुल मुबारक के अहकाम भी हैं और इसमें मर्दों को एक पैगाम दिया जा रहा है और वो क्या है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसाउ इला ज़िक्रिल्लाही वज़रुल बैय, कि जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए पुकारा जाए तो सब छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। यानी जुमे की नमाज छोड़कर गाड़ी में बैठे रहना, टैक्सी चलाते रहना या कोई और काम करते रहना, इसकी इजाज़त नहीं। और इस सूरत के शुरू में खातिमुल अंबिया की बेसत के मकासद जो बुनियादी थे, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी दुआए खलील जो पहले बारे में आई थी ना, कह लीजिए कि आखिरी पारों में अब उसका इजहार है कि अल्लाह ने कैसा प्यारा नबी भेजा। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। फिर इसमें यहूद की मजम्मत भी है और अहले ईमान के लिए हिदायत है। इसके बाद अगली सूरत मुनाफिकून है, जिसको सुनते और सुनाते वक्त इंसान को ऐसे लगता है कि वो एक आईने के सामने खड़ा है। नाम मुनाफिकून है ना, तो इसका पूरा टॉपिक भी मुनाफिकून है। इसमें और कोई बात नहीं सिवाय मुनाफिकों के। शुरू में तो शहादत खुदाबंदी है कि अल्लाह की गवाही काफ़ी है कि जो आपके नाम की गवाहियां देते हैं लेकिन दिल से कितने झूठे हैं। इज़ा जाकल मुनाफिकून अकालू नशहदु इन्नकल रसूलुल्लाह। फिर इसी तरह इसकी शान नज़ूल में भी एक वाक़िया आता है कि अल्लाह के नबी मदीना मुनवरा पर हमला करने की तैयारी में मसरूफ़ थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साथ गए और कुफार को इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपने एक चश्मे के करीब पड़ाव डाला, पानी के मामले एक महाजिर और अंसार साहबी के बीच में थोड़ी तल्ख करामी हुई और मामला भड़कर झगड़े तक पहुंच गया और अल्लाह के नबी के समझाने से फिर माफ़ी तलाफी हो गई। वापसी में अब्दुल्ला बिन उबई ने अल्लाह के नबी की तौहीन की, यानी तौहीन रिसालत का मुर्तकिब अब्दुल्ला बिन उबई हुआ और उसने कुछ सहाबा को प्रवोक किया कि ये क्या तुमने इनको बाहर से आए हुओं को इतना सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ये आ गए इधर देखो यहाँ इनके तो पाँव जम जाएंगे, तुम इनकी इतनी हेल्प कर रहे हो, तुम इनको इतनी इज्जत दे रहे हो, ये ना करो वो ना करो, ऐसी बातें की कि सहाबी थे जैद बिन अरकम, छोटी उम्र के सहाबी थे, उनके कान में ये बातें चली गईं। अल्लाह के नबी को जब पता चला तो अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाया कि तूने ऐसी कोई बात की है, साफ मुकर गया, कहने लगा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उस पर भी ये सूरत नाजिल हुई जिसमें जैद की तस्दीक हुई और मुनाफिकीन के पोल जो थे वो खोल दिए गए थे और इसी तरह से अब्दुल्ला बिन उबई को बताया गया कि इज्जत वाला वो है कि जो सिराज मुनीर बन के पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बना और तुम हो असल में वो। फिर उसका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा हो गया कि अब्बा जब तक आप अपने लफ्ज़ वापस नहीं लेंगे मैं आपको मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा। तो जो किसी के लिए कुछ कहता है या झगड़ा होता है वो खुद उसमें गिरता है। और उसके बाद सूरत तगाबुन, अल्लाह अकबर, क्यामत के नामों में से एक नाम यौम यजमउकुम लियौमिल जम्मी ज़ालिका यौम तगाबुन गबन, हार जीत का दिन। शुरू में अल्लाह ताला का तस्करा है इसमें, फिर हार जीत का दिन, कुफार की हसरत। हमें से हर एक का एक घर जन्नत में और एक जहन्नम है, दोनों में से एक खाली रहेगा। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि हमारा कौन सा घर खाली रहेगा। अगर आपको पता चले कि आपने एक ज़मीन ली, उस पे अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाना शुरू किया और जो घर बनाते हैं ये इमारतें बनाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि जहाँ एक सोचा होता है वहाँ 50 लगते हैं एटलीस्ट, और जिस दिन वो घर पूरा हुआ और आप जब आए तो वहाँ किसी और ने अपने नाम की तख्ती लगा के आपको बेदखल कर दिया। पहले तो दुआ कीजिए कि जो झूठ सच के साथ लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें हमारा हक अता करवा दे और इसी तरह की तकलीफ़ों के ज़रिए अल्लाह हमें ये सबक सिखा दे कि अगर क़यामत के दिन भी ये हो गया तो क्या होगा। बहुत सी नेकियाँ होती है हमारे पास पर कोई एक ऐसा गुनाह होगा जिसकी वजह से जन्नत का घर खाली रहेगा और जहन्नम वाला बुक हो जाएगा, और अपोजिट भी होता है। फिर इसी में अजवाज और औलाद की दुश्मनी का असल मतलब बताया गया कि तुम्हारी वो बीवियां और तुम्हारे वो बच्चे जो तुम्हें दीन से रोके वो तुम्हारे दुश्मन है। उनसे मामला करने के लिए चार लफ्ज़ हैं जो आप अल्लाह के नबी के किरदार से भी इधर देखेंगे इंशाल्लाह कि आपके तो साथ घर वाले दीन पे थे, हमें ये सिखा दिया कि अगर बिलफर्ज तुम्हारे घर वाले दीन में तुमसे कमज़ोर भी हैं तो उनके साथ माफ़ी के लिए अरबी में जो लफ्ज़ आते हैं ना वो सारे इस सूरत में आपको मिल जाएंगे कि तुम फ़ाहज़रूहुम हो, और इसी तरह से आगे इंशाल्लाह जब आयतें आएंगी तो देखेंगे। और फिर उसके बाद सूरत तल्लाक, जिसको निसाए सुगरा भी कहते हैं, छोटी सूरत। पूरी सूरत में भी सिर्फ तलाक ही के मौजू हैं और शोहर और बीवी को तकवा इख्तियार करने का हुक्म भी है। फिर इसमें तलाक देने का पूरा तरीका है, सूरत बकरा में भी हिंट्स थे लेकिन यहाँ उससे भी ज़्यादा खुल के बात है। फिर वो औरत जो मीनोपॉज में चली गई, आयशा बोलते हैं उसको, यानी आसिया लफ्ज़ को ज़रा सा उलट पुलट कर लीजिए, और हामिला, इनकी इद्दत क्या होगी। और इसी तरह से फिर मर्दों को बताया गया कि औरतों पे अगर ज्यादती करोगे तो याद रखो अल्लाह की ताकत और अल्लाह ताला का कब्जा तुम पर इससे बहुत ज्यादा है जितना तुम्हारा अपनी बीवियों पे है। और फिर आखिर में सूरत तहरीम, एक खास वाक्या, प्रॉफिट एट होम अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया कि उसमें से बीवियों को कोई मगाफीर नाम की जड़ी बूटी की बू आने लगी। क्यामत तक के मर्दों को बता दिया कि मर्द को बीवी के लिए किस तरीके से खुशी का जरिया बनना चाहिए। याद रखिएगा, एक मर्द अपनी बीवी की खुशी का कितना ख्याल रखे कि सिर्फ उससे आती हुई खुशबू या बू के लिए वो इतना कंसर्न है कि अल्लाह के हलाल को हराम करने लगा। तो प्रॉफिट एट होम, बीवी की खुशी का ख्याल रखना अपने जाहरी हाल हुलिये से, अपने जिस्म से उठने वाली महक से, अपनी लुक से, और ऑफ कोर्स बाखलाक होना, किरदार का अच्छा होना, अपने दीन के साथ अच्छा होना, ये तो सबसे ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मामले में कितने कंसर्न थे। अल्लाह ने बीच में आके कह दिया कि नहीं, आप हराम को हलाल नहीं कर सकते, बाकी बातें बाद की बात है। तो बीवी को खुश रखना ये कोई नीचे लगना नहीं है, ये मर्दानगी है। वो क्या कहेगी आपको, छोड़ तो सकती नहीं वो आपको। लेकिन ये याद रखिए कि वो मर्द जिनसे सिगरेट की बू आती है या अगर जिनसे कोई और गंदी स्मेल आती है और वो अपनी बीवियों के लिए अजियत का सबब बनते हैं, उनके लिए फिर इसमें कितना बड़ा सबक है। तो बहरहाल अहले ईमान को इसमें खालिस तौबा करने का हुक्म दिया है। और ये पारा बिल्कुल कह लीजिए कि आखिरी पैगाम हमें ये दे के जाता है कि अगर घर में रहने वाले शौहर और बीवी एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे तो फिर दीन के काम भी अच्छे होंगे और दुनिया और दीन का बैलेंस भी रहेगा। तो इस पूरे बारे में इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते ही जाएंगे। और इसी तरह से मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो सिराजुल मुनीर थे, हिदायत का एक चिराग थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने घर के अंदर रोशनी पैदा की। ये जुमला लिखिए कि किसी भी मर्द की पहली गवाही उसकी बीवी देती है और किसी भी बीवी की पहली गवाही उसका मर्द देता है। हज़रत खदीजा वो खुशबख्त खातून साबित हुई कि जब अल्लाह के नबी ने फरिश्ते की आमद का तذکرہ किया, जब पहली वही उतरी तो वो आप पर ईमान ले आई। बिल्कुल इसी तरह इस पारे में आप देखेंगे, और ख़ास तौर पे जब पिछले पारे से आप रब देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि सूरत हदीद थी पिछले पारे में, 27वें पारे की आखिरी सूरत हदीद थी, जिसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया, तुम दीन के काम नहीं करोगे, तुम माल नहीं लगाओगे, तुम वक्त नहीं लगाओगे, तुम अपनी जिंदगियों को वक्फ नहीं करोगे, यानी दे दो खर्च करो की बात थी। अब इस बारे में उस रिश्ते को सामने रखकर जिसको शोहर और बीवी का रिश्ते कहते हैं कि समझा दिया कि जब बीवी दीन के लिए कुछ करना चाहे तो मर्द को उसको पीछे नहीं करना, और जब शोहर दीन पे वक्त लगा रहे हैं, शोहर थोड़ा सा ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं, तो तुम लोगों ने अपने घरों में झगड़े नहीं करने। आज 98% जगहों पे यही मसाइल पर चल रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को बुनियाद बना के घर तोड़ने की बातें करते हैं। जी दीन पे आए तो घर टूट रहा है, जी दीन पे आ गए तो ये हो गया, जी वो हो गया, तो ये सारी नाजायज बातें, ये दुरुस्त बातें नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा आप हिकमत के साथ तरीके के साथ चलते हैं उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके लिए फिर उन चीज़ों को आसान कर देते हैं। तो मोहम्मद अरबी कौन थे कि जिन्होंने बाहर की दुनिया में भी एक इनकलाब बर्पा किया, और अरबों ने तो कभी औरत को इतनी इज्जत दी नहीं थी जितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हज़रत उमर को एक मौके पे किसी ने कुछ कहा, यानी कुछ झगड़ा हो रहा था, बीवी से हो जाती है, दो बर्तन होते हैं खटकते हैं, दो भाइयों बहनों में भी होती है, तो मियाँ बीवी में भी होती है। तो हज़रत उमर खामोश थे, किसी ने उनको ज़रा प्रवोक किया कि आपकी बीवी ने आपके साथ ज़ुबान चलाई या आपको ज़रा इतना ज़्यादा इनॉय कर दिया आज की ज़ुबान में, तो आपने उसको कुछ नहीं कहा। तो अब उनका जुमला जो था उसका खुलासा क्या है, कहने लगे मैं उस औरत को कैसे बुरा कहूँ जो मेरी धोबन भी है, मेरे कपड़े धोती है, जो मेरा खाना भी पकाती है, जो मेरे बच्चों को भी पालती है, और इसी तरह की उनकी खूबियां बयान की कि भाई मैं उस बीवी के साथ कैसे बुरा करूं। तो देखा जाए तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए इतने अहम हो जाते हैं एक दौर में, जैसे अगर एक सॉक जुराब हो और दूसरी ना हो तो बेकार है, जो है वो भी नहीं पहनी जाती। जूते का एक पाँव हो और दूसरा ना हो तो इस्तेमाल नहीं होता ना, वर्थलेस हो जाता है। शिफात का जो तस्वर ना, बस शफी वल्वत, वो भी यही है कि बंदा अकेला होता है, उसका काम नहीं बन रहा, कोई दूसरा आके उसके साथ मिलता है तो उसका काम होता है, इसी को शिफात या सिफारिश कहते हैं। तो क्या पता चला कि घर के मामलात की सिफारिश और गवाही क़यामत के दिन काम आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा था कि मुसलमानों पे हर तरह का जुल्म था, सितम था, तकलीफें दी जा रही थी। कुरैश तनहा नहीं थे बल्कि और भी कबीले उनके साथ थे, और हर कबीला इसी तरह की बातें कर रहा था कि इनको पकड़ो। और देखिए, याद रखिए, यहाँ नोट कीजिए इस पारे के साथ, वो क्या है कि जो ही सच्चा दीन सामने आता है ना, किसी दौर में भी, चाहे वो मोहम्मद अरबी का दौर था या आज का दौर है और पेच के सारे दौर, हलचल तो मचेगी, तूफानी कशमकश तो होगी, क्योंकि लोग अपने बाप दादा के दीन पे होते हैं, मनपसंद दीन अच्छा लग रहा है। कोई मौका आया तो कुछ खाने पका के बांट दिए, कोई रात आई तो सारी रात इबादत कर ली, रमजान आया तो खूब नमाजें, इबादतें, तरावियां, और साथ बल्कि तरावी के लोग तहज्जुद भी पढ़ने लग जाते हैं कि चलो उठे हुए हैं तो पढ़ ही लें, हालांकि वो तो तरावी में पढ़ लिया आपने। हाँ, और आम दिनों में फर्ज भी नहीं पढ़ते। जब भी कभी सच्चा दीन आएगा, झगड़े होंगे, पक्की बात। मिसाल दे चुकी हूँ, गंदे पानी की पाइपें पीने वाले पानी के साथ जब मिल गई तो फिर क्या हुआ, झगड़े हुए। किसी ने कहा चुप करो ऐसे ही पी लो, क्यों बात करें। दूसरे ने कहा बीमार हो जाएंगे, चलो खुदाई करो, थोड़े दिन पानी बंद होते कुर्बानियां दो। ये जो दौर है ना इस वक्त, और हर एक की जिंदगी में आता है। आप नया नया दीन लेंगे ना, जब आपके सामने एक कुरान खुलता है, आज भी हो सकता है कई हिंट मिले हो, दौरे कुरान में तो ऐसी कोई बात होती भी नहीं, ना जरूरत होती है उसकी, लेकिन आप देखेंगे कि बाद में कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जिसकी वजह से लोग अपसेट होने लगते हैं। तो यहाँ अल्लाह के नबी की बात याद रख लीजिएगा कि लोगों ने आपस में माहदा किया, कबाइल जो थे उन्होंने आपस में माहदा किया, और उस माहदे की शराइत क्या थी, कोई कबीला किसी मुसलमान को पनाह नहीं देगा। हर कबीले का फर्ज था कि जहाँ कहीं कोई मुसलमान उसको मिले वो उस पर जुल्मों सितम ढाना शुरू कर दे, टॉर्चर करे, उनको मारे पीटे, जिस तरह हो सके उनको जलील और रुसवा करे। फिर इसी तरह शराफत और इंसानियत सर पीटे तो पीटा करें, वो इसकी जरा भी परवाह न करें, यानी टॉर्चर सेल थे मुसलमानों के लिए। और अगर किसी का गुलाम या लौंडी मुसलमान हो जाए तो इस पे जरा भी तर्स ना खाए, तर्स खाना तो दरकुनार, वो उसे इतना सताए कि वो नए दीन से बेजार हो जाए और फिर अपने आबाई दीन की पनाह ले लें। दिन ब दिन मजालिम बढ़ते जा रहे थे, और इनमें ऐसे भी बेरहम थे जिनके सीनों में दिल नहीं पत्थर के टुकड़े थे। इन्हीं जालिमों ने बेकस मुसलमानों को कैद किया, मारा पीटा, भूखा प्यासा रखा, और मक्का की तपती हुई रेत पर लिटाया, लोहे की गर्म सुलाखों से दागा, पानी में गोते दिए, और न जाने क्या कुछ किया। क्यों सूरत अलंकबूत में अल्लाह ने पूछा, अहसिबन्ना सुयुत्रकु अय्यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर दिया कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे, कि हम मुसलमान हो गए और उनकी आजमाइश न की जाएगी। चूमी गोए मुसलमानम बलर्जम केदानम मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह। शायर कहते हैं कि मैं अपने आप को मुसलमान कहते हुए कांपता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद आजमाइशें आती हैं। तो बहरहाल, इतने टॉर्चर्स के बीच में भी, इतनी जिसको कि जिस्मानी अजियतों के बीच में भी, अहले ईमान के कदमों में लग्जिश नहीं आई। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू के तहत ना सिर्फ ये कि वो जमे रहे, बल्कि पूरी मर्दानगी के साथ उन्होंने मुकाबला किया आजमाइशों का। इन्हीं में यासिर, उनकी बीवी सुमैया और उनका बेटा अम्मार रदी अल्लाह अन्हुम भी थे। ये तीनों मक्का के गरीबों में से थे, यानी एक गरीब फैमिली थी, और बहुत पहले इस्लाम ले आए थे। खानदान वाले इनके कपड़े उतार देते, और जब दोपहर सख्त हो जाती तो तपती हुई रेत पर लिटा देते। इसके अलावा कभी आग में जलाते, कभी पानी में गोते देते। इसी बेकसी के आलम में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता और आपने उनको तपती रेत पे लेटा देखा। और याद रखिए कि ये अबू जहल के गुलाम भी थे, खास तौर पे बीबी सुमैया उसकी लौंडी थी। जब आपने इस सारे घराने को तपती रेत पे देखा तो बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, सब्र करो सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। सब्रन आल यासिर इन्नी माईदुकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता हूँ। हजरत यासिर ने तड़प तड़प कर जान दी। बीबी सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा करार दी गई। अबू जहल ने इनको शहीद किया। हर वक्त इनकी जान के पीछे पड़ा रहता, बड़ी बेदर्दी से सताता। एक रोज इन्हें जोश आ गया और गुफ्तगू का लहजा जरा सख्त हुआ। अब क्या था, अबू जहल तो गुस्से से बेताब हो गया। इत्तफाक से उस वक्त उसके हाथ में बर्छी थी, यानी वो छोटी सी छुरी। खींच कर उसने ऐसा मारा कि जान चली गई और इनकी जिस्म को दो ऊंटों के बीच साथ बांध के दोनों ऊंटों को अलग तरफ चला दिया। जिस्म दो हिस्सों में चिर गया। आप और मैं सोच भी नहीं सकते, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों के जिस्म आरों से चीर दिए जाते थे। जैसे लकड़ी को चीरा जाता है ना, तो बॉडी को पकड़ के बीच में से दो हिस्सों में चीरा जाता है। सोचिए, सोच के भी इंसान के गूज बाम हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन ये सब हुआ और अल्लाह ताला ने फिर आज इनके नाम कायम रखे। जो बेटा था अम्मार, उसको लोहे की जिरा पहनाकर धूप में छोड़ देते, या तपती हुई जमीन पर लिटाकर इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। लेकिन इस मारपीट और धूप की सख्ती से ईमानी गर्मी में कोई कमी ना आई। और ये वही है जिनका जिक्र हमने सूरत नाहल के बिल्कुल आखिर की तरफ पढ़ा था, जो मजबूर कर दिया जाए और फिर वो कह दे कुछ तो फिर उसको माफ किया जाएगा। मनुक्रिहा वकल बहुत मैनो बिल ईमान। तो ये कुछ ऐसे बात है। तो याद रखिए कि ये कहानी घर घर में थी, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में भी सुनते जाएंगे। इस वक्त तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हम बड़े ही नाजुक हो गए हैं। हथेली के छाले की तरह अपने हाथों को हमने रखा हुआ है। जरा सी दीन पर चलने में कोई मुश्किल आई, सबसे पहले दीन का लुबादा उतार देते हैं। कहते कोई बात नहीं ना, कॉम्प्रोमाइज हो। वेस्ट में कुछ मुसलमान जिनको दीन नहीं समझ आया अभी तक, गैरों में रहकर भी उनको इस्लाम की कदर नहीं आई, वो कुछ ऐसे ही करते हैं। उन्होंने अपने हाल हुलिये बदल दिए, नाम बदल दिए, सुन्नतें चेहरों से हटा दी और सो ऑन। तो क्या वो खुश हो गए? नहीं खुश हुए। आपके मेरे लिए इसमें यही पैगाम है। अब आपकी मेरी इज्जत बस इसी में ही है। किस में? कि जो दीन अल्लाह ने आपको मुझे दे दिया उसकी कदर करें। तो बहरहाल ये सब कुछ है, आगे चलते हैं अखलाक के नबी पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कितने अच्छे थे, आपकी अजवाज की गवाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज इस बात की गवाही देती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में होते। हंसी मजाक, मजाक से मुराद है कि मजाक कह लें, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक आम इंसान है। बाज़ वक़्त आपकी अजवाज आपस में बातचीत के दौरान एक दूसरे के मुंह पे आटा मल देती, तो आप दूसरे को कहते तुम भी मल दो, यानी पूरी तरह रिलैक्स थे। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी मेरे लिए वो कपड़े की बनी हुई गुड़िया लेकर आते और मैं उससे खेलती। एक मौके पे उनकी दोस्तें सहेलियां खेलने के लिए आई हुई थी और जो ही अल्लाह के नबी को देखा तो सब छुप गईं। तो आपने कहा नहीं, इनको बुला लो। यानी मर्द का घर में आकर रोब डालना, गुस्सा दिखाना। अब मेरे मुंह से कोई नाम ना निकल जाए किसी जात बिरादरी का, क्योंकि वो तो मैं ऐसे ही कहूंगी, मैं तो नहीं किसी बिरादरी जात को जानती। लेकिन कुछ लोग थे वो बड़े बड़े बनते हैं, कोई चौधरी बनता है, कोई रोब वाला बनता है, कोई शेख साहब बनता है। नहीं, मर्द घर में आए तो ऐसे सुकून और खुशी का इजहार हो घर वालों को कि जैसे एक छत पड़ गई है। अल्लाह के नबी एट होम। आपका अपनी बीवियों के साथ मामला बहुत खूबसूरत था। अमूमी तौर पे भी देखें ना, अगर आपकी पूरी सीरत में, तो आप औरतों को बहुत अहमियत देते थे। आपके दिन का एक हिस्सा खवातीन की दरसो तदरीस के लिए मुख्तस था, असर के बाद का। आप औरतों को कभी भी लेट डाउन नहीं करते थे। अपनी बीवियों को कभी आपने नहीं कहा नाउजुबिल्ला कि तुम फुलां हो, जो आज हमारे कल्चर में कोई कुछ कहता है तो कोई कहता है। मैं क्या बोलूं, हमारा कल्चर औरत को क्या कहता है, कभी सुना है आपने? औरत पांव की जूती और मर्द सर का ताज, क्या बात है। देखिए ना तो जूती के बगैर आप चल सकते हैं, ताज तो किसी किसी का होता है, जूतियां तो सबकी चाहिए होती हैं। तो ये जो हमारे इंडो पाक कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन इस तरह की कर दी कि मर्द को बहुत डोमिनेंट कर दिया, वेस्ट ने उसकी दूसरी हद की, उसने औरत को और ऊपर कर दिया। आप हाथ को देखिए, दोनों हाथ बराबर है, बस ये है औरत मर्द की जिम्मेदारियां, सिर्फ स्टेटस में नहीं, इबादत में नहीं। हाँ औरत को अल्लाह ने एक्सेप्शन दे दी, बीमारी की वजह से कुछ दिन उसको छुट्टी दे दी, बस बाकी चीजों में आप देखिए कि दोनों बराबर हैं। औरत की भी 5 नमाजें, मर्द की भी 5। औरत भी जिंदगी में एक हज कर ले तो काफी है, मर्द भी एक हज कर ले। औरत का भी 2.5% है उसका हिस्सा, तो मर्द का भी इतना ही है, और सो ऑन। तो यहाँ याद रखिए, अच्छे मर्द वो होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे होते हैं। मारा नहीं कभी आपने अपनी बीवियों का, आपकी बीवियों की गवाही है इस बारे में कि अल्लाह के नबी ने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया, कभी गाली नहीं दी, कभी उसको हल्का नहीं जाना। बल्कि आप हजरत आयशा के साथ जो मोहब्बत के साथ बात करते थे, या आयश या उवैश, कभी कुछ कभी कुछ। एक मौके पे हजरत आयशा सिद्दीका खुद भी बयान करती हैं कि जब इनको गुस्सा आता, हजरत आयशा को जब गुस्सा आता तो अल्लाह के नबी ये देखिए उंगली पकड़ के ना, तो आपके नोक पे ऐसे नाक पे प्यार से, या वहीश या वहीश, कहती मेरा गुस्सा दूर हो जाता। उंगली का टच और फिर लहजे की नरमी, सुभान अल्लाह। आज घर क्यों जहन्नुम बने हुए हैं? इसलिए कि ना औरतों ने आयशा वाली तालीमात ली रदी अल्लाह अन्हा, और ना मर्दों ने मोहम्मद अरबी और सिराज मुनीरा को समझा। तो इंशाल्लाह इस पूरे बारे में हम खुद भी पढ़ते और सुनते जाएंगे। तो आज खास तौर पर अखलाक नबी का टॉपिक क्या है, बीवियों से हुस्ने मुआशरत। इंसान है इंसान समझिए, आपका गुजारा तो है नहीं उनके बगैर। घर में आते ही सबसे पहला सवाल क्या है, वेयर इज मॉम, अम्मी किधर है और बेगम किधर हो। एक दो खवातीन है वो कहती हैं कि हमारे मियाँ को इस चीज़ पे बहुत बहस होती है कि मैं घर आऊं और तुम वहां मौजूद हो। अच्छा फिर क्या कहते हैं, बस नहीं, घर में आए एक नज़र देखा चलो चले, फिर चाहे घंटों आपके पास भी ना आके बात के, खाना पीना खाए अपने कामों में मशगूल, लेकिन उनको ये तसल्ली चाहिए होती है कि बेगम घर है। किसी ने कहा ना कि ही इज़ माई डैड, इट्स जस्ट लाइक अ टाइटल, हिज रियल नेम इज वेयर इज मॉम, यानी अब्बू वो है जो घर आते ही पूछते हैं अम्मी किधर है। हाँ तो हमेशा याद रखिए, इस रिश्ते में लिव एंड लेट टू लिव, इज्जत दीजिए इज्जत लीजिए।